संभूति और असंभूति की उपासना। ईशावास्योपनिषद में ऋषि ने 9वें मंत्र से 11वें मंत्र तक अविद्या और विद्या की उपासना तथा उसकी फलश्रुति का निरूपण करने के बाद 12वें मंत्र से 14वें तक संभूति एवं असंभूति की उपासना एवं उसकी फलश्रुति का निरूपण किया है। उपनिषदकार ने अंधम तमः प्रविशन्ति इत्यादि मंत्रों के द्वारा आस्तिक वेदांत के प्राण परात्पर परब्रह्म की सत्ता को अभिव्यक्त करने के साथ ही साथ सांख्य मत में प्रतिपादित प्रकृति को ब्रह्म प्रेरित सिद्ध किया है। आध्यात्म चिंतन के तत्वान्वेषक जो अधिकारी गण असंभूति अर्थात अव्याकृत कारण रूप प्रकृति की उपासना करते हैं, अर्थात प्रकृति को ही परब्रह्म मान करके उसका श्रवण मनन एवं निदिध्यासन करने में ही अपने साधना श्रम को सफल मान बैठते हैं, वे चेतन स्वरूप प्रकाश पुंज ब्रह्म ज्ञान रूपी लक्ष्य के मार्ग में आवरणात्मक अज्ञानांधकार विशिष्ट प्रकृति रूप ब्रह्म की माया के घोर अंधकार के पथ में भूतले भटकते रह जाते हैं। और जो लोग संभूति अर्थात प्रकृति के जायमान दृश्यमान एवं चराचरात्मक कार्य रूप जगत में ही अपने साधना की पराकाष्ठा का अनुभव करते हैं, वे घोर अंधकार से भी अधिक प्रगाढ़ अंधकार में भटककर परमार्थ तत्व अर्थात ब्रह्म चिंतन एवं ब्रह्म साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु से संभूति पद निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सम्यक उत्पत्ति अर्थात नाम रूप वाला कार्य। उक्त शब्द में नञ समास कर देने पर असंभूति पद बुद्धिगत हो जाता है, जिसका अर्थ अव्याकृत अनुत्पन्न कारण रूप प्रकृति है। इसी आशय को संख्यावादी आचार्य कपिल जी ने अपने मत में ब्रह्म के स्थान पर प्रकृति या अव्यक्त पद का प्रयोग किया है, परंतु आस्तिक वेदांत में इस अव्याकृत प्रकृति को माया रूप ब्रह्म प्रेरित जगत प्रपंच प्रसविनी माना गया है। इससे स्पष्ट है कि असंभूति तक ही पहुँच रखने वाले साधक मोक्ष के परम लक्ष्य ब्रह्म साक्षात्कार तक न पहुँचकर बीच के ही अंधकार में दिग्भ्रमित होकर पुरुषार्थ के परम अर्थ मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। और प्रकृतिजन्य कार्य रूप संसार में ही जो साधक सत की उपासना करने लगते हैं, वे तो उससे भी अधिक साधना में असफल रह जाते हैं, अर्थात प्रकृति के मानने वालों से भी एक कोटि पीछे रह जाते हैं, क्योंकि कार्य रूप संसार का ज्ञान करने के पश्चात उसके जनक प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। तदनंतर प्रकृति के संचालक सतचित एवं घन प्रकाश पुंज निर्विकार ब्रह्म का साक्षात्कार ही निर्विकल्प समाधि सुलभ मोक्ष का निर्विवाद एवं प्रामाणिक प्रारूप है। उपनिषदकार ने ईशोपनिषद के 12वें मंत्र में प्रकृति और जगत के तत्वान्वेषी साधकों पर कठोर आघात किया है, परंतु दार्शनिक मीमांसा की दृष्टि से वह आघात निंदापरक नहीं है, प्रत्युत उत्साहवर्धक है। आशय यह है कि जब तक कोई साधक साध्य विरोधी लक्ष्य के विपरीत तत्व का अनुभव नहीं कर लेता, तब तक वह मूल साध्य को अपने साधनों से सिद्ध करने में परिणित नहीं कर सकता। जिस प्रकार जल संतरण क्रिया में डूबने की अनुभूति से तैरने की प्रेरणा मिलती है, तथा प्रारंभिक गणित विज्ञान के लिए सही उत्तर खोजने के लिए कल्पित अंक की सहायता होती है, उसी प्रकार संभव रूप पूर्वोक्त संभूति कार्य जगत के अनुशीलन एवं उपासना से अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियां तथा लोक प्रसिद्ध नवनिधियां सुलभ होती हैं। फलितार्थ यह हुआ कि संसार में रहते हुए वेद शास्त्रोक्त नियमों का पालन करते हुए कोई भी साधक मानव सुलभ उक्त सभी प्रतिष्ठाओं को प्राप्त कर लेता है, किंतु इन प्रतिष्ठाओं की प्राप्ति अंधकार के रूप में ही स्वीकृत है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि संसार में रहकर अनासक्त आदि निष्काम कर्म आदि क्रियाकलापों से मानवोचित उपलब्धियां संभव हैं, किंतु मानवोत्तर योगी गण समुचित उपलब्धियां हस्तगत नहीं हो पाती। प्रकृति रूप जगत के कारण तत्वों के चिंतन में समाहित चेता साधक अर्थात मानव कार्य रूपी जगत सूक्ष्म तत्व स्वरूप प्रकृति के अनवरत अनुसंधान के द्वारा और अधिक ऊपर उठ जाता है तथा उसे मानव के मुनि इत्यादि की उपाधि सुलभ हो जाती है, परंतु मूल लक्ष्य अभिशेष ही रह जाता है। इसी तत्व को दृष्टिगत करते हुए उपनिषदकार ने संभूति और असंभूति दोनों की उपासना की फलश्रुति करते हुए अपने विचारों को साक्ष्य द्वारा परिपुष्ट किया है, जिसका मूल अंश ईशोपनिषद का अधोलिखित मंत्र है, अन्य देवाहुः संभावादन्यदाहुरसंभवात् इति सुश्रम धीराणाम येनस्तद्विच चच्छिरे। ईशावास्योपनिषद 13वां मंत्र। उपनिषदकार ने प्रकृति और कार्य का पृथक पृथक फल वर्णन किया तो संभवतः उन्हें संदेह हुआ होगा कि साधक मंडल केवल प्रकृति के अनुशीलन में अथवा केवल जगत के अनुसंधान में ही अपनी सफलता न मानने लगे, इसलिए एक साथ दोनों तत्वों को जानने का निर्देश किया है और फलादेश करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि विनाश अर्थात सांसारिक ज्ञान से उद्वा विज्ञान से मृत्यु सदृश क्लेशों को पार करके प्रकृति पर ज्ञान का अनुभव करते हुए ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर ही पूर्ण अमरत्व प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना से भौतिक क्लेशों से परित्राप पाकर ही असंभूति अर्थात अव्याकृत कारण ब्रह्म की उपासना से अमृत तत्व के उपलब्धि होती है। भाव यह है कि असंभूति अमृत तत्व स्वरूप नहीं है, प्रत्युत अमृत तत्व स्वरूप ब्रह्म के साक्षात्कार में सहायक है। अतः साधक मानव को मोक्ष प्राप्ति के लिए संभूति और असंभूति दोनों की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि मोक्ष अर्थात अमृत तत्व की प्राप्ति में संभूति और असंभूति की उपासना सहायक होती है।